नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की यात्रा से भारत फिनलैंड संबंध को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज, इसराइल का ईरान में सुरक्षा कमान केंद्र पर हमला, ईरान में मरने वाले नागरिकों की संख्या 1000 से अधिक। ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा उपकरण तैनात कर रहे हैं। भारतीय विमानन कंपनी खाड़ी देश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए आज 58 उड़ान संचालित कर रही है। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आज शाम कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से। अब समाचार विस्तार से। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत के राजकीय यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री स्टब रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि के साथ ही मुख्य वक्ता है। नई दिल्ली पहुंचने पर श्री स्टब ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका यह दौरा व्यापार सहित दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका यह दौरा भारत फिनलैंड संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल राष्ट्रपति स्टब से होने वाली मुलाकात और रायसीना संवाद 2026 में उनके मुख्य भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में बासिज मुख्यालय और आंतरिक सुरक्षा कमान केंद्रों पर इसराइल के सिलसिलेवार हमलों से पश्चिम एशिया में जारी संकट और गहरा गया है। इसराइली रक्षा बल IDF ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन लक्षित कमान केंद्रों का इस्तेमाल ईरान शासन पूरे ईरान में नियंत्रण बनाए रखने के लिए करता था। IDF ने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और अन्य प्रणालियों को भी निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो ईरान की वायु क्षमताओं पर हमले जारी रखे हुए हैं और वायु रक्षा प्रणालियों का संचालन करने वाले ईरानी सैनिकों को मार गिराया है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार 28 फरवरी से ईरान में 1097 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। इस बीच पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीकी इजरायली संयुक्त बलों के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान साइप्रस पर हुए हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस साइप्रस में युद्धपोत और वायु रक्षा उपकरण तैनात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन साइप्रस और वहां तैनात ब्रिटिश सैन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी फ्रांस के विमान चार्ल्स डी गोल को भूमध्य सागर में ले जाने का आदेश दिया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने कहा है कि ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ग्रासी ने यह भी कहा कि ईरान के पास हथियार बनाने की क्षमता के करीब समृद्ध यूरेनियम का बड़ा भंडार होगा और निरीक्षकों को पूरी तरह से पहुंच देने से इनकार करना गंभीर चिंता का विषय है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण फंसे यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विमान कंपनियों की आज 58 उड़ानें संचालित करने की योजना है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है, इनमें इंडिगो की 30 और एयर इंडिया तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की 23 उड़ानें शामिल है। मौजूदा स्थिति के कारण भारतीय विमानन कंपनियों की 1221 और विदेश एयरलाइंस की 388 उड़ानें रद्द हो चुकी है। यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले संबंधित विमानन कंपनियों से उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि म्यांमार का स्थान भारत की तीन प्रमुख विदेश नीतियों पड़ोसी पहले एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में प्रमुखता से शामिल है। नई दिल्ली में सरसो बेकाम साहित्य केंद्र वभन के उद्घाटन कार्यक्रम पर डॉ जयशंकर ने कहा कि ये केंद्र भारत के घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरसो बेकमान केंद्र म्यांमा के शास्त्रीय और लोक साहित्य के संरक्षण तथा अध्ययन में सहयोग करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये केंद्र म्यांमा की विरासत को नई पीढ़ी और जनसमूह तथा सुलभ बनाएगा। दोनों देशों के बीच सहयोग का उल्लेख करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि म्यांमा के साथ भारत का जुड़ाव जन केंद्रित और मांग आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि निरंतर सहयोग से दोनों देशों के बीच व्यापार और जनसंबंधों में वृद्धि होगी। श्री जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने कोविड महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कठिन समय में म्यांमा का हमेशा समर्थन किया है। डॉ. जयशंकर ने इस बात की पुष्टि की कि भारत एक समावेशी म्यांमा के नेतृत्व वाले और म्यांमा के स्वामित्व वाले शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ईटानगर 9 मार्च से 13 मार्च 2026 तक महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए 5 दिवसीय जन सुनवाई आयोजित करेगा। ये सुनवाई पापुहिल पापुमपारे जिले में स्थित एपीएससीडब्ल्यू कार्यालय में आयोजित की जाएगी। आयोग ने यह भी सूचित किया है कि जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा या किसी प्रकार के अत्याचार का सामना कर रही हैं वे एपीएससीडब्ल्यू कार्यालय में अपनी शिकायत पत्र जमा कर सकती है। सामान्य जनता से भी जन सुनवाई में उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर डीमापुर और साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर नागपुर द्वारा आज अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में भारत को जानो एवं बॉर्डर एरिया प्रोग्राम तथा मध्य दक्षिणी महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन नामसाई तथा राज्य के कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से दक्षिण मध्य भारत और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समृद्ध लोक एवं पारंपरिक कला विधाओं को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। रंगों का त्यौहार होली आज पूरे देश में मनाई जा रही है। ये पर्व वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, शुभकामनाएं देते और मिठाइयां बांटते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रंगों का यह त्यौहार लोगों के जीवन में प्रेम और आशा लाता है और एकता तथा भाईचारे को मजबूत करता है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्यौहार सभी के लिए खुशियां लाएगा और सभी नागरिकों को एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार नवजीवन आशा और भारत के सभ्यता की जीवंत भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश के समृद्ध परंपराओं में गहराई से निहित होली भाईचारे आपसी सम्मान और साझा आनंद को दर्शाती है जिससे समाज का ताना बाना मजबूत होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि होली का त्यौहार पूरे वातावरण को नई ऊर्जा से भर देता है जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। श्री मोदी ने कामना की कि रंगों और आनंद का यह त्यौहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता लाए। उन्होंने ये भी कहा कि त्यौहार के दौरान चारों ओर दिखाई देने वाले खुशी के जीवंत रंग सभी को आनंद और उत्सव के भावना में सराबोर कर देते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 7 मार्च को 2 दिन के दौरे पर अगरतला पहुंचेंगे। वे 8 मार्च को अल्बर्ट एक्का युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वे बाद में त्रिपुरा विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज शाम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना मुंबई में इंग्लैंड से होगा। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।